शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हमारे हरिंदर भीरा नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हमारे जितने भी शिव गुरु भाई शिव गुरु बहने ने सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी चर्चा की आवाज़ें जा रही है, सबको दिल से कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो कहना है, मैं एक अपना खुद का चर्चा लेकर के आई हूँ, जो आप लोगों के बीच में देना चाहती हूँ। मेरा शादी बचपन में ही हो गया था, जबकि मेरा उम्र 16-14 हो रहा था, 15-16 यही हो रहा था, मेरा शादी हो गया था। होने के बाद में कुछ दिन बाद, साल भर बाद मैं ससुराल आई। 2007 में मेरा शादी था, 8 में गौना हुआ। जब मैं ससुराल आई तो हमारे हस्बैंड भी पढ़ाई करते थे, मैट्रिक में उस टाइम एडमिशन उनका था। तो हमारे हस्बैंड पढ़ाई करते थे, फिर कुछ दिन बाद पढ़ाई किए करने के बाद में उसने बाहर चले गए, कुछ दिन के लिए बाहर आ गए। फिर कुछ दिन मैं बहुत अकेले रही, 4-5-6 साल तक अकेले रही। उसके बाद में मेरा कोई औलाद नहीं हो नहीं रहा था। तो गांव वाले लोग ज़्यादा करके ताना देते थे।
हाँ, हाँ, हाँ।
घर में तो किसी को दिक्कत नहीं था, खास करके पड़ोसी को दिक्कत हो रहा था,
बहुत ज़्यादा
रिश्तेदार को दिक्कत हो रहा था, जो दयाद लोग थे उनको दिक्कत हो रहा था। हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं था, मैं किसी को क्या जानती थी कि वो क्या हमारा बिगाड़ रहे हैं, जो वो लोग हमसे इतना जलते थे। वो लोग बार बार कोई बात होती थी, घर में कलेश होती थी, हमारे ऊपर चढ़ बैठते थे कि इसीलिए तो बांझ है, औलाद नहीं हो रहा है।
हाँ हाँ।
तो ऐसे है वैसे फलाना ठिकाना, अपने अपने भाषा में लोग गाली देने लगे। मेरी मम्मी बोली कि ठीक है। फिर 5-6-7 साल बाद हम अपने हस्बैंड के साथ आए, बाहर में रहने लगे, हिमाचल प्रदेश में रहते थे। जब रहने लगे कुछ दिनों बाद, 1-1.5 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हुई तो फिर गांव आई, 4-5 महीने बाद गांव आई, तो फिर मेरा वो बच्चा नुकसान हो गया। बार बार इसी तरह 4 महीना 7 महीना 8 महीना पे फिर एक, मतलब 2 जोड़ुआ बच्चा था, वो भी नुकसान हो गया, 8 महीने का हो करके नुकसान हो गया। बार बार इसी दिक्कत से मैं उलझ रही थी, जी रही थी। मुझे कोई भरोसा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में कभी माँ बन पाऊँगी, चाहे मैं औलाद का मुँह भी देख पाऊँगी, मैं कभी सोच नहीं रही थी। क्योंकि जब आगा में खाना मिलता था और छीन लेता था इंसान ने, तो मुझे भरोसा नहीं होता था। फिर मैं दिल्ली आई, मेरी जेठानी उठानी रहती थी, किराए पे पहले रहती थी, अब तो अपना का मकान हो गया है। रहने लग गए तो फिर अपने जेठानी के पास आए। तो एक दिन का बात है, मेरी दीदी का फ़ोन आया, बड़ी वाली दीदी जो राजस्थान में रहती हैं। तो वो बोली कि बाबू, मैं एक जगह तुम्हारे लिए देखवाया है, यहाँ पे शिव गुरु का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए देखवाया है, तू एक बार आ। मैं बोली कि ठीक है दीदी, मैं आऊँगी। मैं जब अपने पति से परमिशन लेने गई, परमिशन नहीं मिल रहा था। मेरे हस्बैंड बोले कि अगर तुम कहीं चली जाओगी इस मैटर में, तो कभी दोबारा मेरे पास नहीं आओगी। बार बार मुझे यही धमकी मिलती थी। मैं बोली कि नहीं, मुझे जाने दीजिए एक बार, क्योंकि वो भी इंसान थक चुके थे, पैसा फेंक फेंक करके थक चुके थे, उनको भी भरोसा नहीं होता था कि मैं कभी बाप बन पाऊँगा। तो कोई भी इंसान थक जाएगा तो वो जवाब दे देगा कि नहीं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं बोली एक बार भरोसा करके देखिए। तो बोल, दीदी को भी उल्टा पलटा उसने सुनाया, बोले कि दीदी कहीं भगवान उगवान नहीं ना है, जो तुम्हारी दीदी भगवान बन के आई हैं औलाद दे देंगी। मैं बोली कि एक बार जाने तो दीजिए। आ तो नहीं नहीं जाना है, अगर चली जाओगी तो क्या तो तुम रहोगी या मैं रहूँगा, आ नहीं तो दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखने दूंगा। मैं अपने पति के बातों को पीछे छोड़ करके, उनके बातों को उल्लंघन करके मैं घर से कदम निकाली। मुझे लगा किसी ने बोला कि तुम चलो, मुझे कोई धक्का दे करके बाहर निकाला। मैं गई
जै, जै।
मैं गई राजस्थान में गई, मैं तो डर के मारे थर थर कांप रही थी कि अब अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड सच में कड़ा पावर के हैं, नहीं रख पाएंगे। मैं कहाँ रहूँगी, फिर कैसे रहूँगी, मैं तरह तरह के बातें मन में सोचती रहती थी। बाकी मेरे ऊपर शिव गुरु का दया ऐसा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं गई, जाते ही मेरे को वहाँ डलिया लगा, हाजिरी लगा बाबा के दरबार में। मेरे को जैसे ही वहाँ पे सब कुछ जो भी टोटरम होता है किए, करने के बाद में बोले कि जाओ, तुम्हारा नौवा महीना औलाद गोद में नहीं हमने दिया तो तुम्हारा ये जूता और मेरा ये सर रहेगा। फिर भी मैं इस बात को भरोसा नहीं किया। मैं घर आई, घर आई मेरे हस्बैंड ने बोले कि क्यों आई हो यहाँ पे। मैं बोली कि मुझे रहने दीजिए, एक महीना वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, रहने दीजिए। अगर एक महीना में कोई सफल नहीं हुआ तो मुझे जो चाहे कर दीजिएगा।
जय
15-16 दिन जैसे हुआ, मुझे कुछ खुशबू अच्छा नहीं लगता था, प्याज का जो तड़का लगता है वो अच्छा नहीं लगता था, लहसुन का खुशबू अच्छा नहीं लगता था, मुझे उल्टी उल्टी सा मतलब अलग अलग फील हो रहा था, मुझे भी डाउट होने लगा, तो मुझे अच्छा कुछ नहीं लग रहा था। मैं वहाँ फ़ोन जैसे सोची लगाने के लिए, वहाँ से डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन आया। जो भाभी बैठती थी वो बोली कि बेटा तुम्हारा टाइम फाइनल हो गया है, तुम मेरे पास इसी महीने आ जाना। मैं उसी महीने गई, मैं जैसे बताने की कोशिश की वो बोली कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपने आप को संभाल के रखना।
जय हो शिव।
और तुम कहीं किसी के बिस्तर पे जा कर के ऐसे मत बैठना, कहीं भी बैठना अपना चुनी रख के वहाँ पे बैठ जाना। मैं जाती थी जैसे वो मुझे ब्रजनेम किए थे वैसे वैसे मैं करती थी। करने के बाद में एक महीना हो गया, मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का पता चला। मेरे हस्बैंड बोले जब से गोद में नहीं आ जाता है मैं खुश नहीं हूँगा। 9 महीना हो गया मेरा बाबू इसी डॉक्टर अंबेडकर में नॉर्मल बाबू हुआ, पैदा हुआ।
जय हो शिव।
हुआ फिर सबको खुशी हुई, बहुत खुशी हुआ। तो हम यही कहेंगे कि शिव गुरु सबको दया किए हैं, हम पे भी दया किए हैं, आप लोग भी एक बार अजमा के देखिए, आपको भी दया करेंगे। आप लोग बिल्कुल उनसे दया भरोसा मत हटाइए, अनस मत टूटिए, आप लोग उनसे रूठिए मत। ये मत कहिए कि उनको पूरा नहीं किए हम भी नहीं करेंगे, हमको भी पूरा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम निश्चय होकर के उन पे भरोसा कीजिए, सारा कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, बहुत दयालु है, दया जरूर करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की
जय।
इसी बात को लेकर के मैं विराम लेती हूँ।
जय।